ओम शांति। हमारे बीच में राजीव गुप्ता भाई जी हैं, जो स्पार्क के कोर फैकल्टी मेंबर हैं और वो स्पार्क मुंबई में अपनी सेवाएं देते हैं। राजीव भाई जी का परिचय वैसे बहुत लंबा है, पर मैं अभी समय के कांटे को देखते हुए थोड़ा ब्रीफ में परिचय दूंगी। राजीव भाई जी पिछले 20 सालों से ज्ञान में चल रहे हैं और ये तो आप जानते ही हैं कि वो हमें हमेशा समय के पीछे लेकर चलते हैं, इतिहास में लेकर चलते हैं। पिछले 2500 वर्षों में क्या क्या हुआ है, दुनिया में क्या क्या चेंजेस आए हैं, राजीव भाई जी हमेशा उसका हमको एक ग्लिम्प्स दिखाते हैं। तो आज भी मैं उसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देती हूँ। जगदीश भाई जी जब ज्ञान में पहली बार, यज्ञ में जब पहली बार आए थे, तो अगर आपको याद भी होगा कि बाबा ने उनको क्या कहा था, सबसे पहले क्या सेवा दी थी, बाबा ने कहा था कि राम की सीता नहीं चुराई गई थी, ये सबको बताना है। जगदीश भाई जी को ये कहा था। तो जगदीश भाई जी ने अपना बहुत सारा कंट्रीब्यूशन इस सेवा की तरफ ऑलरेडी दिया और इसी बाबा की इस आशाओं को पूर्ण करने के लिए राजीव भाई ने भी इस पर बहुत सारा रिसर्च किया है, तो वो आपको बताएंगे। उनका टॉपिक है रामायण सत्य है या मिथ्या, और वो उसके बाद एक दूसरा टॉपिक भी लेने वाले हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स का यज्ञ के साथ क्या रिलेशन है, यज्ञ की टाइमलाइन कैसे चली और न्यूक्लियर वेपन्स का शोध हुआ और उसके बाद क्या क्या हुआ, वो भी आपको बताएंगे। अभी मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ राजीव भाई जी को। ओम शांति।
शांति। अभी आपने गीत सुना, तो वो जो गीत सुना तो आपको क्या याद आया? आप निश्चिंत रहिए, हमको इतना उस प्रकार का सेशन नहीं है। तो अभी आपने गीत सुना तो आपको शिव बाबा की शायद याद नहीं आई होगी। किसकी याद आई होगी? रामानंद सागर की याद आई होगी। आपको याद है कि 1987 के दशक में एपिसोड तभी चला करता था और तभी तो हम स्कूल में हुआ करते थे और साथ में देखा जाता था कि सारे रास्ते ऑलमोस्ट क्राउड कम हो जाता था और मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग संडे सभी के सभी लोग कहां होते थे? आपको मैं दिन याद दिला रहा हूं। उत्तर भारत में तो ऐसा होता था कि लोग पहले टेलीविजन की पूजा करते थे, सच में टेलीविजन की लोग पूजा करते थे, हमारे देश में ऐसे बहुत धार्मिक चीजें आती हैं तो लोग काफी उसका महत्व रखते हैं। तो मुझे वो दिन याद आ गया, मेरा रामायण से सबसे पहला परिचय तब हुआ जब मैं बंबई से गर्मी की छुट्टियों में उत्तर भारत जाया करता था और अयोध्या के, खैर मैं तो बनारस की तरफ से हूँ, अयोध्या से तो थोड़ा दूर कनेक्शन है, लेकिन हमने सुना था कि हमारे परदादा जो है रामचरित मानस पढ़ते थे। तो मैंने पूरी बहुत कमरा थे, कमरे से मैंने पूरे ऊपर से कहीं से मैंने ढूंढ के निकाली रामचरित मानस, तो उसमें देख रहा हूं कि दादाजी के, परदादा के एक बाल, सफेद बाल पड़े हुए हैं। तो मेरे मन में संकल्प आया परदादा तो चले गए लेकिन कितना विचित्र है। खैर तो फिर हमने अध्ययन करना चालू किया और तब मैं स्कूल में ही था और मुझे इतना आश्चर्य लगा, रामचरित मानस किसने लिखा है? तुलसीदास ने लिखा है, जो अयोध्या के ही करीब में हुए थे और करीबन 500 वर्ष हुए उनको। और मुझे आश्चर्य इस बात का लगा कि जो उत्तर भारत की जो परंपराएं जो मैं वर्तमान में देख रहा हूं और जो उन्होंने रामचरित मानस में जो वर्णन किया है, सारी चीजें एकदम मैच हो रही हैं, बहुत सारे भोजपुरी और अवधी के शब्द मैच हो रहे हैं। तब मुझे इतना स्पष्ट हो गया कि जब भी कोई लेखक कुछ लिखता है तो उस वर्तमान सिचुएशन का, उस समय का ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल और कल्चरल सारी चीजों का असर लेखक की लेखनी पर होता है। तब हमारा इंटरेस्ट बढ़ा और तभी तो ये रामायण की एपिसोड आती भी थी। और मेरे लिए एक और आश्चर्य का ये विषय था कि रामानंद सागर के रामायण में जिस पात्र ने रावण का रोल प्ले किया, अरविंद त्रिवेदी, गुजराती हीरो हैं वो, और तो उनकी कन्या मेरे स्कूल में ही पढ़ते थे और मेरे से एक कक्षा सीनियर थी, तो लोग उसको बोलते थे देखो वो है ना रावण की बेटी। तो इसलिए मुझे सारे दिन याद है। तो मैं अभी आपके सामने कुछ चीजें शेयर करने जा रहा हूं। पहले रामायण के बारे में ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन होगा कि रामायण के बारे में क्या है, इसकी वास्तविकता क्या है, हम कितना जानते हैं और हमारे सामने क्या पेश किया जा रहा है। सत्र शुरू करने के पहले एक बात मैं आपको स्पष्ट देता हूं और वह यह है कि इसमें मैं जो भी बातें बता रहा हूं हर एक बात के कोई ना कोई रेफरेंसेज हैं, कोई भी बात बिना रेफरेंस के मैं नहीं बोल रहा हूं। और जहां हमें लगेगा कि हाँ ये हमारा मंतव्य है हम उनको भी स्पष्ट करते हैं और बाबा की क्या मान्यताएं हैं उसको भी स्पष्ट कर रहे हैं। तो जितनी भी मैं बातें बता रहा हूं देखा जाए तो ये बड़े बड़े रिसर्चर और इतिहासकार और विद्वानों ने जो रिसर्च किया है उसका सारांश आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। ठीक है शुरू करते हैं। तो रामायण शब्द का एक और चीज है कि अगर मैं इसमें कुछ बातें मैं बोलूं और शायद किसी को हर्ट हो तो उसके लिए मैं आरोपी नहीं हूं, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, विद्वानों का ऐसा कहना है, क्योंकि लोग बहुत भावनात्मक होते हैं हमारे देश में। तो इसलिए पहले से मैं सारी चीजें स्पष्ट की देता हूं। हमारा पूरे सत्र का उद्देश्य यही है कि हम इस प्रकार से रामायण को समझें जिससे हमारी स्वोन्नति भी हो, हमारे जो है हमारे भारत देश का भी जो है पूरी दुनिया में नाम हो। तो रामायण शब्द का अर्थ होता है रामायण, आयण मतलब होता है जर्नी, यात्रा, या राम का पर्यटन। और हम सबको मालूम है ये इस रामायण को किसने लिखा था, महर्षि वाल्मीकि ने, और उनको संस्कृत का आदिकवि कहा जाता है क्योंकि वाल्मीकि के पहले, महर्षि वाल्मीकि के पहले जो संस्कृत थी वो अलग थी और महर्षि वाल्मीकि ने जो संस्कृत लिखा वो महाकाव्य वाली संस्कृत अलग थी। तो रामायण में जैसे 18 पर्व होते हैं वैसे ही महाभारत में जैसे 18 पर्व होते हैं वैसे रामायण में 7 कांड हैं, 7 बुक्स हैं, उसको कांड कहा जाता है। और पूरे रामायण में कितने श्लोक हैं, 24,000, और 500 चैप्टर्स हैं जिसको कहा जाता है सर्ग। क्लियर है? तो टोटल कितनी बुक्स हैं, 7, उसको कांड कहा जाता है, और टोटल 500 सर्ग या चैप्टर्स हैं। अगर महाभारत और रामायण की तुलना करें तो महाभारत में लोग मानते हैं 1,00,000 श्लोक, तो रामायण कितना हो गया, 25,000, मतलब कितना परसेंट हो गया, 1/4। ठीक है, ये उन बुक्स के नाम है। पहला जो किताब होती है, बुक होती है, उसको हम लोग बाल कांड कहते हैं, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा आरण्यक कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा युद्ध कांड और छठा युद्धकांड और सातवां उत्तरकांड। ये टोटल सात बुक्स होती हैं। ये सेशन थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा तो हो सकता है, मैंने तो बहुत सरल करने का प्रयास किया है, टेक्निकलिटीज को ऑलमोस्ट रिमूव करने का प्रयास किया है, तो हम थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे तो चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। तो टोटल कितने बुक्स हो गए? सात। और दुनिया के ऑलमोस्ट सारे विद्वान, संस्कृत के भी और भी जो इतिहासकार हैं, मानते हैं कि बालकांड और उत्तरकांड ये बाद में ऐड किया गया है, ये ओरिजिनल रामायण का हिस्सा है ही नहीं। देखिए मैं आपके साथ, अच्छा आप में से कौन कौन है जिन्होंने रामायण पढ़ी है? पढ़ी है मैं कह रहा हूं, देखी है नहीं। आप पाएंगे कि मेजॉरिटी लोग, मैं कहूंगा कि ऑलमोस्ट 95% लोग, 90-95% लोगों ने जो रामायण का ज्ञान अर्जित किया है वो या तो टेलीविजन सीरियल से अर्जित किया है, या तो कुछ थोड़ी बहुत हमने कहानियां पढ़ी होंगी, या कभी कभार कुछ पढ़ा होगा। अभी मैं आपके सामने रामायण की बुक आपके सामने रख रहा हूं जिसमें सातों के सात कांड हैं। यह संस्कृत का हिंदी ट्रांसलेशन भी है, इसमें संस्कृत के श्लोक हैं। इसमें जो है लगभग पहले से पांच बुक आ जाती है और रिमेनिंग दो बुक्स इसमें आते हैं, तो टोटल ये रामायण ये रही। गीता प्रेस के द्वारा पब्लिश्ड है रामायण। और ये किसने लिखी थी? हाँ, अब मैं इसके बारे में कुछ चीजें मैं कमेंट्स करना चाहूंगा, इसके लिए मैं बुक लेकर आया हूं। मैं बुक्स पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो समझना बहुत आवश्यक है। अब इस पूरे, आप में से सबको जिनको रामायण में की राम कहानी नहीं मालूम है, उनको 2-3 मिनट में ब्रीफ पहले मैं कहानी बता देता हूं ताकि आगे की चीजें समझ में आएगी। पहला जो कांड है जिसे हम बाल कांड कहते हैं, उसमें श्री रामचंद्र के युवा अवस्था का जिक्र किया गया। दशरथ की कहानी आती है कि दशरथ की कितनी रानियां थी? 3 रानियां थी। और फिर वो घटना आती है कि उनको कोई पुत्र नहीं होता है। 3 रानियों में से कौन कौन सी रानियां हैं? कौशल्या, ऑलरेडी आपको मालूम है तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। वाह, कितनी अच्छी ऑडियंस है। और फिर बताते हैं श्री राम अपनी जो है शिक्षा पूरी करते हैं। शिक्षा पूरी करने के बाद गुरुकुल में कहां पे आते हैं? अयोध्या आते हैं। लेकिन जैसे ही अयोध्या आते हैं उसके पहले ही विश्वामित्र उनको प्रपोजल रखते हैं कि भाई जब मैं यज्ञ करता हूं तो राक्षस क्या करते हैं? मुझे बहुत विघ्न डालते हैं, तो इसमें रक्षा कौन कर सकता है? राम रक्षा कर सकते हैं। तो विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जाते हैं और लेकर आगे जाते हैं और बताते हैं कि ताड़का रहती है, ताड़का का वध होता है, और आगे चलते हैं तो गंगा अवतरण की कथा आती है। आगे चलते जाते हैं फिर कौन कौन आती है? अहिल्या। और राम ने क्या किया था? अहिल्या का उद्धार किया था। बताते हैं कि अपने पैर चरण स्पर्श करते हैं तो अहिल्या जो पत्थर के रूप में रहती है लाइव हो जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं तो मिथिला जाते हैं जहां जनक जो है सीता का स्वयंवर रचते हैं, और वहां पर कौन सा इंसिडेंट रहता है? धनुष, जो धनुष जो उठा सकता है शिव धनुष, वही जो है सीता को वरेगा, ऐसी बातें आती हैं। आपको आश्चर्य होगा कि अर्जुन की कथा में भी धनुष और द्रौपदी का आता है। बहुत सी कहानियों में बहुत कुछ सिमिलरिटीज हैं और बहुत सारी चीजें मैच होती हैं। तो राम धनुष तोड़ते हैं, सीता के साथ उनका क्या होता है? स्वयंवर। फिर मैरिज करके रिटर्न आते हैं और फिर शुरू होता है अयोध्या कांड। तो ये था बाल कांड, फिर क्या शुरू होता है? अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में कौन सी घटना घटती है? मंथरा की। मंत्रा इंस्पायर करती है किसको? कैके को इंस्पायर करती है। इसके लिए वो घटना घटित होती है। फिर राम को क्या मिलता है? 14 वर्ष का वनवास, और उसके बदले भरत जो है राज्य करेगा, ऐसे करके बात आती है। इसलिए इस बुक का नाम है अयोध्या कांड। क्लियर हो गया? तो इस कांड को अयोध्या कांड कहा जाता है, राम को वनवास। दूसरा जो है आरण्य कांड। आरण्य का मतलब क्या होता है? जंगल। तो राम जो है वन में दंडकारण्य में निवास करते हैं। फिर यहां बताते हैं उनके पिता का देहांत होता है दशरथ का। फिर बताते हैं कि ये भरत जो है उनको ले आने के लिए प्रयास करते हैं लेकिन राम मना कर देते हैं। राम आगे बढ़ते हैं, फिर राम वहां से होते हुए पंचवटी आते हैं। पंचवटी में फिर क्या होता है? सूर्पनखा की एंट्री होती है। सूर्पनखा अपना जो है प्रस्ताव रखती है शादी का। फिर बताते हैं लक्ष्मण क्या करते हैं। सब लोगों को याद रहता है सारी कहानियां? नहीं, अच्छा। फिर इसके बाद बताते हैं कि वो जाके कंप्लेन करती है किससे? अपने भाई से। फिर रावण सीता हरण करने का जो है के लिए बाध्य होता है, बाध्य नहीं कहेंगे, इच्छा ही कहेंगे। फिर इसके बाद जो है वो मरीचि को कन्विंस करता है, जो मृग अर्थात गोल्डन डियर या सोने के हिरण का रूप लेता है। सीता उसकी तरफ आकर्षित होती है, लक्ष्मण जाता है, लक्ष्मण रेखा खींचता है, सीता जो है उस मर्यादा की रेखा को तोड़ती है और रावण उठाकर लेकर चला जाता है। तो अरण्य कांड के बाद फिर होता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा का राजा कौन था? वाली था। तो वाली और सुग्रीव की जो घटना है वो किष्किंधा से जुड़ी है, इसलिए उसका नाम किष्किंधा कांड है, जहां पे राम की हनुमान से मुलाकात होती है, सपोर्ट मिलता है और सारे वानर सेना जो है सीता जी की तलाश में भटकने मतलब चालू होते हैं, चालू होता है उनकी उनका जो प्रोजेक्ट मिशन। इसके बाद आता है सुंदर कांड। इसका नाम ही है सुंदर, सुंदर मतलब ब्यूटीफुल, अर्थात इसमें किसकी बात आएगी? हनुमान, हनुमान के कर्तव्यों की, कि कैसे हनुमान जो है लंका में पहुंचते हैं, लंका में पहुंचकर सीता जी के पास पहुंचते हैं, इंद्रजीत के साथ उनका युद्ध होता है, रावण का जो बेटा रहता है, और लंका दहन करते हैं, वापस रिटर्न जर्नी। ये विषय जो है सुंदर कांड का है। और लास्ट में फिर क्या होता है? राम और रावण का युद्ध, जिसे हम युद्ध कांड कहते हैं। युद्ध कांड में ऐसा होता है कि रावण पर श्री रामचंद्र जो है विजय प्राप्त करते हैं। विजय प्राप्त करने के बाद पुष्पक विमान से फिर सीता की अग्नि परीक्षा होती है। अग्नि परीक्षा होने के बाद पुष्पक विमान से सभी के सभी लोग कहां आ जाते हैं? अयोध्या। रामायण खत्म। रामायण ओरिजिनल यहां तक ही था, लेकिन इसके बाद एक और बुक जोड़ी गई जिसका नाम है उत्तरकांड, जिसमें बताते हैं धोबी की घटना आती है कि धोबी आरोप लगाता है सीता जी पे और फिर राम क्या करते हैं? सीता का त्याग करते हैं। सीता जो है फिर वाल्मीकि के पास जाती है, ऋषि वाल्मीकि के पास। लव और कुश का जन्म होता है, फिर बाद में वही लव कुश आते हैं और वो कथा सुनाते हैं, और बाद में श्री राम को मालूम पड़ता है तो सीता ये तो मेरे पुत्र हैं। तो फिर भी राम जी क्या करते हैं, उनको इतना यकीन नहीं होता, फिर कहते हैं वापस लूंगा मैं अग्नि परीक्षा। और फिर बताते हैं कि सीता बोलती है कि अभी बहुत हाइट हो गई अग्नि परीक्षा की, अब मैं सीधा कहां समा जाती हूं। तो हर एक मूवी का कोई ना कोई एंड होता है, एक हैप्पी एंडिंग या तो सॉरो वाली एंडिंग। तो बाद में लोगों ने क्या किया था कि ओरिजिनल रामायण ऐसे नहीं थी, लेकिन बाद में लोगों ने क्या कर दिया, कुछ लोगों ने, मैं बताऊंगा कौन वो लोग थे, उन्होंने उसका एक दुखांत ऐड कर दिया, सॉरो एंडिंग कर दिया। तो लोगों के मन में रहता है बेचारी सीता जी के साथ क्या हुआ, कई सोचते हैं अरे श्री राम जैसे पति कम से कम सीता जी की भावनाओं को उसने समझा होता। बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा हो जाते हैं। तो ये जो लास्ट वाली धोबी की घटना वाली कहानी है, ये ओरिजिनल रामायण में थी ही नहीं। और आज दुनिया के सब ऑलमोस्ट विद्वान मानते हैं कि बालकांड, जिसमें बहुत सारी कहानियां हैं, और उत्तरकांड, जिसमें धोबी का आरोप और ये सब सारी बातें, ओरिजिनल रामायण में थी ही नहीं। ये हम नहीं कह रहे हैं, दुनिया के ऑलमोस्ट मेजर विद्वान मानते हैं। कोई अगर आदमी संस्कृत का अनुवाद भी पढ़ेगा तभी भी समझ जाएगा कि ये किताब बाद में ऐड की गई, अब की है ही नहीं। अभी दिख रहा है ये चित्र, इसमें क्या दिखाया गया है? इसमें जितने श्लोक हैं उस हिसाब से सर्कल बड़ा बताया गया। तो सबसे बड़ा सर्कल कौन सा है? युद्ध कांड वाला, सबसे बड़ी किताब। देखिए लास्ट में सिर्फ दो बुक मिलाकर पूरी एक बुक बन रही है। तो ये श्लोक के हिसाब से बताया गया है कि कौन कौन से इसमें कितना है। एक इंटरेस्टिंग बात यह कि कामिल बुल्के भले ईसाई पादरी थे, लेकिन उन्होंने काफी मिशनरी थे, लेकिन काफी उन्होंने यहाँ के ग्रंथों को पढ़ा, बहुत अध्ययन किया, उन्होंने अपनी पीएचडी की, और उन्होंने पता किया कि पूरे भारतवर्ष में 300 अलग टाइप्स की रामायण है। पूरे भारत ने देश विदेश में मिला के 300 वैरायटीज ऑफ रामायण। और रामायण जितने भी आजकल चल रही है उसके तीन पार्ट, ओरिजिनली तीन पार्ट थे। वो तीन पार्ट कौन सा? एक कहते हैं साउथ इंडियन एडिशन या दक्षिणी रामायण, दूसरा बंगाली एडिशन, और तीसरा है पश्चिम उत्तर अर्थात नॉर्थ वेस्टर्न एडिशन। ये तीन प्रकार के पार्ट रामायण के पूरे ऑल पाए जाते हैं। सारे के सारे रामायण इसी तीन रिसेशन या तो पार्ट पे बेस्ड हैं। तो महाराजा सयाजी यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, उन्होंने एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क लिया, जितने भी रामायण जो फैले हैं क्यों ना उनको एकत्रित करके एक ऑथेंटिक वर्जन, क्रिटिकल एडिशन तैयार किया जाए। तो उन्होंने एक क्रिटिकल एडिशन तैयार किया, बताते हैं कि 10 से 15 वर्ष लग गए इस एडिशन को बनाने में, और कई विद्वान जो है एक साथ मिलकर ये प्रयास कर रहे थे। इसका अभी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मौजूद है। ये था कुछ टेक्निकल डिटेल्स। अब आपको बहुत सिंपल कर देते हैं। तो हमको मालूम है कि चार युग होते हैं, कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो मैं आपको सिर्फ समरी दे रहा हूं रिसर्च वर्क की, अगर ऐसे सेशन लूंगा तो 4-5 घंटे केवल रामायण पे चले जाएंगे, केवल सारांश दे रहा हूं और मेरा प्रयास है कि मैं सरल भाषा में आपको मैसेज जो है कन्वे कर सकूं। तो वाल्मीकि जी ने रामायण कभी लिखी थी? ये कली द्वापर वाली जो हमें रामायण जो उपलब्ध है, कभी लिखी थी? द्वापर युग में। द्वापर मतलब हम जो चक्र का हिसाब बताते हैं उसके हिसाब से है। और द्वापर युग में कितने साल पहले लिखी थी? मेजॉरिटी विद्वान मानते हैं ईसा मसीह के 300 वर्ष पहले, ईसा मसीह के 300 वर्ष पहले। साउथ इंडियन में जो है कम्बन रामायण मशहूर है जो 12वीं सदी में लिखी गई थी।